संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में पे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये टीका भी हो गई थी, उसका जो अपन ने टिप्पणी लिखी है उसके ऊपर वो नहीं हुई थी, उसे पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि सप्तभंगी दो प्रकार की होती है, प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी। नए सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके स्थान पर स्याद या कथनचित पद का प्रयोग किया जाता है। इसका आजकल बता दिया था, अरे मतलब ऐसा नहीं कि चाहे जहां स्याद लगा दिया, चाहे जहां कथनचित लगा दिया, चाहे जहां ईव लगा दिया, चाहे जहां भी लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसमें हर बात बहुत सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की है। जैसे उन्होंने संबंध भद्र ने कह दिया ना कि हमारे में तो स्याद लगाई है, तो प्रमाण के कथन के संदर्भ में कह दिया। जब अपेक्षा बता देते हैं तो स्याद लगाने की जरूरत नहीं होती है, अब वो नए सप्तभंगी में होता है और उसके साथ फिर ही लगाना अनिवार्य हो जाता है। ही में जो कठोरता है उसे निकालने के लिए और उसमें दृढ़ता कायम रहे। आप जानते हैं ये जो होता है विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान में कहते जैसे ये अंगूठा ऐसा हो गया ना, उदाहरण के लिए दे रहा हूं मैं, तो ये तो नहीं बता रहा हूं, हो गया। तो ये कहते हैं इसके दो अर्थ किए जाते हैं कि ये एकदम किसी का अंगूठा ऐसा रहता है, वो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं, पीछे को मुड़ता ही नहीं है। अपने घर पे देखना शांति से है ना। तो कहते ये आदमी बहुत हटी है, माने उसको मुड़ता नहीं है ना, तो इसको एक हटी भी कहते हैं और दृढ़ भी कहते हैं। फिर अपनी बात बोलो पक्का है, ऐसे किसी कहने से बदलता नहीं है। तो दृढ़ता गुण है और हटीपन दोष है। अब एक ही है, मतलब बात यह है कि वो अपनी बात बदलता नहीं है, उस पर अड़ा रहता है, ये उसका नेचर है। अब अच्छी चीज के बारे में वो अड़ा रहे तो वही गुण हो जाता है, बुरी चीज के बारे में अड़ा रहे तो वही दोष हो जाता है। दोष और गुण तो अच्छे बुरे के आधार पर होते हैं ना। अब ये ऐसा हो गया तो इसको क्या कहते हैं कि वो लचीला है। लचीला का मतलब कि परिस्थिति को देख के वो अपने को मोड़ना भी जानता है। जैसे नहीं क्या कि अकड़ के बैठे रहे होते हैं, टूटे तो टूट जाए, साथ में नुकसान हो जाए, देश समाज कुछ भी, और वो अपने बात पर अकड़ के बैठा ही रहता है, ऐसा नहीं है। इसमें लचीला रुख है, परिस्थिति को देख के समझ कर यदि बात हो, मन वो अपनी गलती भी जल्दी से स्वीकार कर सकता है यदि उसे मालूम पड़ जाए तो, और उसको इसे कहते हैं लचीला रुख है। और ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं ढुलमुल है। ढुलमुल समझते हो कि इसमें ऐसी कही तो हाँ, तो उसके उसने विरुद्ध कही तो उसमें भी हाँ, और उसने उससे विरुद्ध कही तो उसमें भी हाँ। अब लचीला और ढुलमुलपन और मजबूत जड़ है ना, तो ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही इसमें जो ही लगाते हैं तो दृढ़ता भी आती है और हट भी दिखता है। तो यदि वो अपेक्षा लगा देते हैं ना साथ में, तो वो हट वाला दुर्गुण तो निकल जाता है और दृढ़ता बनी रहती है। ही लगाने से ही को निकालने की जरूरत नहीं है, ही को निकालेंगे तो वो दृढ़ता भी खत्म हो जाएगी, समझ रहे ना। तो इसलिए हमने उसमें अपेक्षा बता दी तो वो बात, वो दोष था वो निकल गया और गुण वो रह गया। अब ऐसे में भी कोई के मतलब ही लगाया नहीं बताया, अपेक्षा स्पष्ट नहीं करे, अपेक्षा करे नहीं, उसके दिमाग में भी नहीं हो तो क्या करे। पहले तो अपने दिमाग में होना चाहिए ना वो अपेक्षा स्पष्ट, सारी जनवाणी का हम अध्ययन करेंगे तो उसकी सब अपेक्षाएं हमारे ख्याल में स्पष्ट होनी चाहिए। यदि नहीं है वो तो फिर हमें उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। एक दिन में, दो दिन में, चार दिन में उसका उत्तर आ सकता है, क्योंकि हम भी तो आत्मा ही है ना, और आत्मा ही खोजते हैं, कोई दूसरे तो थोड़ी खोजते हैं। अच्छा है दूसरे का सहयोग मिल जाए और वो हमें बता दे और हम उससे प्राप्त कर लें, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन ऐसा सौभाग्य हरेक को प्राप्त थोड़ी होता है, सहज हरेक को उपलब्ध नहीं होता है ना। पूज्य गुरुदेव श्री थे 30 वर्ष पहले, और उनकी बात सारी दुनिया के सामने एक दफे आ गई थी और सारी दुनिया इस बात को समझती थी कि जे निश्चय व्यवहार के बारे में इनका ऐसा मत है, जिनके व्यवहार अभूतार्थ है। निमित्त उपादान के बारे में इनका ऐसा मत है। यदि मोटी मोटी जो बात है वो सारे जगत तक, विरोधियों तक भी पहुंच गई थी ना। कोई भी चाहता, चाहे विरोधी भी होता और चाहे पक्ष का, तो उनकी उन अपेक्षाओं को जो वे कह रहे हैं बारीकी से समझ सकता था। उनके प्रवचनों में आए हैं उससे, उन लेखन उनके यहां साहित्य छपा उससे, तो उनसे अत्यंत विनयपूर्वक बात करके, फिर विनयपूर्वक बात करने की तो उन्होंने कभी मनाई की नहीं, कर सकता था ना, नहीं की तो चलेगी, समय तो निकल जाता है। अब आज वो कितनी दुर्लभ हो गई बात। आप कहोगे नहीं नहीं हमारे पास 9000 कैसेट मौजूद है, हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है जो मौजूद है वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्य की बात है। लेकिन वो जो हमारा प्रश्न होता है उसका उत्तर उस 9000 पेजों में से निकालना इतना आसान है? हम उनको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और उनमें जो बातें बताई उनका लाभ ले सकते हैं, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं निकाल सकते। फिर अपना भी मान लो इतना साहित्य है और उसमें उस बात का उत्तर है भी, लेकिन उसको खोज निकालना इतना आसान थोड़ी होगा, वो भी एक समुद्र हो जाता है। 10,000-15,000 पेज है, हो जाता क्या? नहीं हो जाता है, हमको याद नहीं रहता। हम कहते कभी कहीं लिखा है मैंने, कहीं ऐसा लिखा है, हैं? ऐसा होता है तो दूसरों को तो कितना कठिन हो जाएगा। तो यदि वो आपके सामने उपलब्ध हैं और सहज आपको वो बात समझने को मिल सकती है तो इससे बड़ा महाभाग्य तो दुनिया में बहुत कम होता है। ऐसे अवसर को एक सेकंड भी छोड़ने लायक नहीं है, उसकी दुर्लभता की बात है ना, है ना, बोधि दुर्लभ भावना में उसकी दुर्लभता बताई जानी चाहिए है? भगवान महावीर थे, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती थी, बहुत लोग आते थे। कितने बहुत लोग आते थे? हजारों। तो हिंदुस्तान में हजारों ही थे, कि लाखों थे, कि करोड़ों थे। वे तो एक ऐसे सर्वव्यापी, मतलब सर्वमान्य महाव्यक्ति होने चाहिए जो केवल ज्ञान के लेकर बैठा है, है? ऐसा विचार बहुत आता था कई दफे कि जब साक्षात केवल ज्ञानी बैठा होगा तब तो कोई इसी तरह का कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता है, होने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे मिथ्या दृष्टियों ने अपना मिथ्यात्व तो वहां भी सुरक्षित रखा, समूचरण में बैठ करके भी सुरक्षित रखा। ये बारीक बारीक बातें तो बहुत जाने दो, इतनी सी मोटी सी बात बताई कि द्वारका 1200 वर्ष बाद जल जाएगी, मैंने क्या बताया? इसमें ऐसा समझने का क्या, बुद्धि की बात क्या थी कि बुद्धि में समझ में नहीं आई? सबकी समझ में आ गई कि जलना किसे कहते हैं, जल जाएगी का मतलब क्या है। तो मैंने कहा ठीक है जल जाएगी तो हम आग बुझा देंगे, हर साल रोजीना आग लगती है देश में और फिर बुझा दी जाती है, कहीं लगती है किस गांव में, उस गांव में, है? तो अपने अपने साधनों से बुझा दी जाती है। अभी भी अमेरिका में ऐसे जंगल हैं कि जिनमें आग लग जाती है तो उन्हें 6-6 महीने तक कोई बुझा ही नहीं सकता, ये जो इधर तेल के कुएं हैं ना इराक वगैरह में, इन कुओं में आग लग जाती है तो वो उसे बुझाना बहुत कठिन है। लाखों रुपए का तेल जल जाता है लेकिन उसे बुझा नहीं सकते। तो ऐसी भी आग होती है ना, और ऐसी भी होती है रोजीना चूल्हे में अपन लगाते हैं और बुझा देते हैं। लेकिन उन्होंने तो बहुत स्पष्ट करके बता दी थी कि कोई नहीं बचेगा श्री कृष्ण और बलदेव के अलावा। वे अपने माता पिता को बचाना चाहेंगे तो उन्हें भी नहीं बचा पाएंगे। अब जब माता पिता में कोई बचाने में लगेंगे और दूसरे को करने में कौन नंबर आएगा उनका। मैंने कोई स्पष्ट तो नहीं छोड़ा था ना, लेकिन वहां बहुमत ऐसे ही लोगों का था कि जिन लोगों ने नहीं मानी वो बात, बोला तब समझ में आई कि केवल गांधी से क्या होता है। सामने हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, इसमें क्या दम है? क्योंकि मानना नहीं मानना तो प्योर उसकी पूरी योग्यता पर निर्भर करता है। उसका भी भाग्य होना चाहिए ना, उसकी भी समझ होनी चाहिए ना विकसित। ऐसे भी लोग हैं ना कि उनके जीवन काल में रहे और उनसे नहीं समझी, स्वामी जी से समझी, अत्यंत नजदीक भी रहे पास में भी रहे, तो बस अकेला वो प्रवचन का टाइम होता था तो उस वक्त भी आराम करने चले जाते थे और बाकी फिर आगे पीछे आ जाते थे। मुझे याद आती है कैलाश जी की, जब मैं यहां आया था ना सन 67 में पर्यूषण में प्रवचन करने, तो यहां ठहरा था जो वो हमारे कमरा है ना बैठक का भी, उसी में ठहरे थे हम 7 लोग आए थे। क्योंकि वो यहां आना था ना, देखना था सब कि आने लायक है कि नहीं है, इसलिए मेरे मित्र लोग भी साथ में आए थे, तो उसमें हम ठहरे थे। तो यहां एक मुनीम जी कहते थे, उनसे मुनीम जी तो क्या भी पुजारी थे, निमंत्रण में पूजा करने के लिए रखे थे, वो वास्तव में गोदगा जी के दोस्त थे, मैंने बचपन के यार होते ना, तो गोदगा जी ने वो कोई काम नहीं था उनके पास तो उन्हें रखा दिया था। एक खटिया डाले रहते थे शहर में, और वो उसमें एक उपन्यास आते ना बाजार में रेलवे स्टेशन पे सस्ते, वो उन्हें पढ़ते रहते थे, अपने दिनों पढ़े रहते थे। 10 दिन हम रहे उनके जिम्मे हमारी सारी व्यवस्था थी। जो मैं बताना चाहता हूं कि कितना दुर्लभ है जनवाणी का सुनना, तो जब हम यहां प्रवचन करते थे स्मारक में तब वे शहर चले जाते थे। जब शहर में उनके बिल्कुल मकान के बगल में प्रवचन करते थे तब वे यहां आ जाते थे। मैंने पूरे 10 दिन ऐसे निकल गए कि उनने एक भी प्रवचन नहीं सुना, यानी इस लेवल तक कि वे पहचान नहीं पाएगा पंडित जी कौन है इन 7 आदमियों में। पंडित जी की व्यवस्था में उन्हें रखे थे, उन्होंने सारी व्यवस्था की, लेकिन वो इन पंडित कौन है, 7 आदमी थे ना, तो इनमें पंडित कौन है प्रवचन कौन करता है ये भी पहचान सकते थे। तो मैं उनसे कुछ काम बात कहता था तो वे ऐसी उड़ा देते थे, कुछ करते नहीं थे। मेरे साथ एक हीरा लाल जी थे दोस्ती, वो आए थे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, तो वो कहते थे तो वो सब बात मानते थे। ये काली टोपी लगाते थे रहते थे, मेरे से बड़े होंगे 10-20 वर्ष क्या, तो उनकी बात सब मानते थे। तो हम जरा ऐसे ही अच्छे नजदीक के दोस्त थे कि मैं तुम क्यों भी हम बात कर लेते थे आपस में, है ना। वैसे बहुत भगत थे मेरे। मैं जब इंदौर में रहता था तो हमने अपने बाजार से कोई एक चीज लेने ना मैं गया ना बाई गई, वो ही ला करके सब हमारे घर में रखते थे। सब व्यवस्था उनके जिम्मे थी, किसी ने कही नहीं थी, अपने प्रेम से भक्ति से। तो मैंने कोई बात उनसे कहा, हीरालाल जी उनसे आप ऐसा कहो, आप नहीं कह सकते कितनी सी बात क्या, जो भी मैं कहूं। मैंने कहा मेरी सुनते नहीं है रे। क्यों भाई, पंडित जी तो आप हैं। देखो उनको ही पंडित जी समझ रहे थे, जबकि उनने कभी जिंदगी में प्रवचन किया ही नहीं होगा, ऐसा कुछ ज्यादा समझते नहीं थे। आज हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं, चले गए नहीं, ये तो चले ही गए। हीरालाल जी हैं कि नहीं है, वो भी चले गए, दो ही जने चले गए। मैंने बताया ना आपको कि ऐसे पूरी व्यवस्था रखते हैं और ऐसे बिल्कुल असंपृक्त रह जाते हैं। वो लोगों के नाम भी मैं ले सकता हूं लेकिन नहीं लेना चाहता हूं। कि सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, 22 घंटे अपने साथ रहते हैं और बस एक घंटे को वे अलग हो जाते हैं, बस नहीं सुनते, नहीं सुनना है, नहीं समझना। जानते हैं सारी दुनिया सुन रही, बहुत मरिया मानती है, अच्छा है, सत्य तत्व है, लेकिन उसे विकल्प भी नहीं आता है इसको मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये तो बहुत महाभाग्य की बात है। ये बात मैं सब इसलिए कह रहा हूं, ये 116वीं गाथा का मैंने थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो उसमें ये आने वाली है, आई है बात, क्रिया अफल नहीं कहे ना, परम धर्म अफल है, फिर क्रिया अफल नहीं कही है ना गाथा आगे लिए, थोड़ा मैं गाथा बोलो।
शाश्वत नहीं परंतु है विभाव स्वभाव तो है, अफल परम धर्म परंतु क्रिया फल नहीं कही।
क्या लगता है, क्या क्या लिखा जी? परम धर्म तो अफल है, उसका तो कोई फल नहीं है, और ये राग द्वेष की क्रिया है ये फल वाली है। लगता है कैसी बात कर रही है, बिल्कुल उल्टी बात। ये उल्टी है कि नहीं है ये कल बताएंगे, आप बता रहे हो ऊपर नीचे की पंक्ति फिर पढ़ो एक दफे।
अफल परम धर्म परंतु क्रिया फल नहीं कही।
देखा ना, परम धर्म अफल है और क्रिया अफल नहीं, ये कौन राजवेश की क्रिया, ये दुनियादारी की बात है, ये अफल नहीं है और परम धर्म अफल है। आएगा नंबर, आज आ जाए, कल आ जाए, जब आ जाएगा, चलिए तो बन पीछे कर रहे हैं ना। देखो कहा पेज नंबर क्या है भैया, 43। हाँ, तो एक कथनचित प्रयोग, इनके प्रयोग को मैंने अत्यंत सावधानी से करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई साधारण बात, साधारण बात समझने के लिए है, मैंने समझाने के लिए किसी बात को पंडित की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रयोग करते वक्त बहुत सावधानी की जरूरत है। क्या उपर्युक्त सप्तभंगी नए सप्तभंगी है जिनमें अस्ति ये वैसा लगाया है ना, क्योंकि उसमें अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई है, स्वरूप से सत है, पर रूप से असत है आदि। तो स्वरूप से पर रूप से ये जो अपेक्षा लगा दी ना, स्पष्ट कर दी गई, तो इसका क्या नाम है, नए शब्दों की। तो स्वरूप से सत है, तो स्वरूप से सत ही है, ऐसा अर्थ है, रूप से असत ही है, कहते शब्द भी है असत भी है और ही लगा रहे, ही में तो अपर पक्ष का निषेध होता है ना, लेकिन वो स्वरूप से लगा ना, तो जो मैंने अभी बताई आपको कि उसकी दृढ़ता उसमें कायम है और उसमें अपेक्षा लगी है, इसलिए हट का दोष उसमें नहीं आता। आचार्य जयसेन इस गाथा की टीका में स्पष्ट लिखते हैं कि यह नए सप्तभंगी है, वे यह भी स्पष्ट कर देते हैं कि पंचाष्टी काय की 14वीं गाथा की टीका में स्याद अस्ति आदि प्रमाण वाक्यों द्वारा प्रमाण सप्ति बताई गई है। अब आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ोगे तो जब पढ़ोगे, शायद कोर्स में 85 काय नहीं है ना, तो नहीं भी पढ़ोगे। कुछ लोग इतने महापुरुष होंगे कि सारी जिंदगी भी नहीं पढ़े, कुछ लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो अभी ऐसे मौके पे प्रमाण सप्तभंगी को वहां देख लेना चाहिए, इसी मेरा मतलब है। नए सप्तभंगी में एव अर्थात ही शब्द का प्रयोग होता है, और प्रमाण सप्तभंगी में भी शब्द का प्रयोग होता है। वस्तु किसी अपेक्षा सत भी है, किसी अपेक्षा असत भी है, यह प्रमाण सप्तभंगी के प्रयोग हैं। और स्वरूप की अपेक्षा सत ही है और परिरूप की अपेक्षा असत ही है, ये नए सप्तभंगी के प्रयोग हैं। वैसे लिखने में कोई कसर नहीं, थोड़ी पूरी स्पष्ट कर दी है बात, लेकिन तो उपयोग लगा के पढ़ना तो पड़ेगा नहीं क्या। ये बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि अच्छे अच्छे पंडितों को, और मुनिराजों को तो मैं कह नहीं सकते, पंडित शब्द में मुनिराज भी आ ही जाते हैं ना, वे भी तो पंडित हो सकते हैं, मैंने स्वाध्यायी अध्ययन वाले होने लगते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल ही नहीं होता, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। मैंने जिंदगी भर से हम पंडिताई कर रहे हैं, दिन निकल गए, लेकिन ये भी और ही का प्रयोग कैसे किया जाता है उनका पता नहीं आता। अपन ने शायद अनेकांत साधवाद वाले लेख में ही और भी के प्रयोग पर एक डेढ़ पेज पूरा लिखा है ना, बिना अपेक्षा बताए ही शब्द का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है, और स्याद या कथनचित लगाए बिना भी लगाना दुष्प्रमाण सप्तभंगी है। जैसे कि अपने किसी ने अपन को निमंत्रण दिया कि साहब आप हमारे यहां शादी में पधारना, आऊंगा ही, जैसे कहा होगा आ सकता हूं, क्यों तो ये क्या फर्क है दोनों में, कि आ सकता हूं नहीं साहब, आना ही है कि नहीं, नहीं आने का विचार तो पक्का है, टिकट भी करा लिया है, लेकिन फिर ये क्यों कह रहे हैं कि आऊंगा भी, आ भी सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि उन दोनों ये कोई बहुत जरूरी काम मेरे को आने वाला है और मैं शायद नहीं आ पाऊं, तो वो आप अपेक्षाओं से बता दें सामने वाले को तो उसकी समझ में आ जाता है, आप कितना ही हो लेकिन वो उसकी समझ में आ जाता है। ये मेरे एक मित्र थे यहां सोहनलाल जी प्रेस जयपुर प्रिंटर्स वाले, तो जब भी अपना कोई काम प्रेस का उनके, जब तक उन्हीं के हम छपती थी सब किताबें पूरी, तो कोई और कहता, मान अखिल जी कहते खास में ज्यादातर, तो वो उस पर ध्यान ज्यादा नहीं देते, और जब मैं कहता तो जब फटाफट छप जाती वो चीज, तो उनसे लोग कहते कि साहब आप ऐसे कहो, मेरे से कहते थे, और ये कहते भी हमारी तो बात तो सुनते ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि ये आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इन लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, और हर काम को मैं कैसे तो कहूंगा आपसे, काम तो इन लोगों को ही करना है। तो मालूम से उनने क्या बताया शांति भाई कि दादा इनके और तुम्हारे आपके कहने में बहुत फर्क है, ये तो वहां से ऑर्डर देते हैं, वहां तक छप जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, और आप वो पूरा कारण बताते हैं, फिर 25 तारीख तक छप जाना चाहिए, क्योंकि 26 तारीख से अपना वो एक शिविर है तो उसमें लोग आने वाले हैं, उनको अपने मुझे देना है, एक आदमी 1000 किताब बांटना चाहता है, इसलिए मुझे 25 को 1000 किताबें चाहिए, तो उनकी समझ में आ जाती तो ताकत लगाए तो कर देते, वो कुछ नहीं बताएंगे कि आप इतनी जो हमको तारीख दे रहे हैं वो क्यों इतनी अर्जेंट है, आपको 4 दिन बाद छपेगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत अर्जेंट काम लग रहे हैं काम का, समझे ना, पहले उन्हें छपेगी फिर आपकी बात छपेगी, तो वो बताएगा ही नहीं, तो कहता आपकी जरूरत ही नहीं समझता है, बोले यदि ये समझाए मुझे कि आपको इस तारीख को इतने बजे क्यों चाहिए, तो वो गारंटी से उसको उस वक्त मिल जाएगी। अब इनको यही शिकायत रहती है कि आप कहते हो तो उससे उन पर गारंटी से आ जाती है, और हम कहते रहे तो नहीं सुनती है। अरे भाई वो हमारा जो काम लग रहा है वो बहुत अर्जेंट है और हमारा उसमें नुकसान होगा, लेकिन यदि आपका काम उससे ज्यादा अर्जेंट हो तो हम नुकसान करके भी रात को बुलाकर, रात को काम करवाकर उसे निकालेंगे, रात को बुलाते हैं तो डबल पैसे लगते हैं, ऐसा है प्रेस में, इसमें तो हम डबल पैसा देकर के भी काम निकालेंगे, अब आप कैसे रूटीन में ही छपना है, और हम उसे इसमें डबल पैसा देकर आपसे बिल डबल भेजेंगे तो आप दोगे नहीं, ख्याल में आए ना। तो ये सब बहुत बातें होती हैं, वो जो आदमी समझता नहीं है वो समझता है बस ये इनकी आज्ञा मानते हैं हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसा नहीं है, उसमें अकेली आज्ञा वाली बात नहीं है, कुछ और है। और फिर वो ऐसा भी होता है, एक अंधा बैठा था भीख मांग रहा था, तो इतने में वो एक आया पुलिस वाला, ए अंधे यहां आगे नहीं पीछे को बैठा, कहां हाल हवालदार साहब। फिर दूसरा आया, फिर उसने कहा क्यों भाई यहां क्यों बैठे, जरा पीछे बैठते। तो कहां थानेदार साहब। फिर आया, ए सूरदास जी जरा ऊपर बिराज जाओ तो अच्छा रहेगा। तो कहा हां साहब राजा साहब, क्यों कि तूने कैसे जाना, तू तो अंधा है, कि उसकी वाणी से जाना, समझ में आया ना होगी ना। इनका राजा साहब का ऐसा ही है, वो कहते थे कि जो आज्ञा भी दे दें तो भी मैं मानूंगा, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनने कभी मेरे को ऐसी आज्ञा नहीं दी। पूरी परिस्थिति समझाई, उसकी आवश्यकता समझाई, और फिर जो मेरी समझ में आ गई तो मैंने फिर वो उस काम को आगे निकाला। तो अपेक्षा का कितना महत्व है, समझे ना। मैंने कहा ना, बहुत ही जरूरी जाना हो, तुम उनके घनिष्ठ मित्र हो, तुम्हारे बेटे की जब शादी हुई थी वो दिन भर काम करते रहे थे, और तुम कह रहे हो मैं नहीं भी आ सकता हूं, तो वो तो कहिए क्या बात करता है, खरे लेकिन वो काम ऐसा हो जैसा उस दिन मेरी पेशी है, मैं कोशिश कर रहा हूं उसकी छुट्टी मिल जाए, लेकिन नहीं दी और वो अड़ गया तो फिर मुझे जाना पड़ेगा। तो वो उसकी समझ में आ जाती है कि भाई ये इतना जरूरी काम है कि भाई वहां जाना पड़ेगा। ऐसे माने अपेक्षा को स्पष्ट करने का अर्थ समझा रहा हूं मैं, क्यों अपेक्षा स्पष्ट करना इस लौकिक व्यवहार में भी कितना जरूरी है। क्या वस्तु स्वरूप समझने और समझाने के लिए सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का अद्भुत अनुसंधान है, अनुपम निधि है। जैन दर्शन के मर्म को समझने के लिए इस सप्तभंगी न्याय को समझना न केवल अत्यंत आवश्यक है अपितु अनिवार्य है। जब अनिवार्य है और जो आदमी इसको नहीं समझेगा तो वो जैन धर्म का मर्म नहीं समझ सकता, और अब जैन धर्म का मरम नहीं समझेगा तो कहां का सम्यक दर्शन, कहां का सम्यक ज्ञान, कहां का चारित्र, कोई थोड़ी क्रिया पाल लेने का नाम चारित्र थोड़ी है। यानी ये अनिवार्य है। कोई आदमी आगे कहे कि मेरे को अणुवृत्त दे दो तो पूछना चाहिए तुझे सप्तभंगी आती है कि नहीं आती है, तो पहले सप्तभंगी पढ़ के आ, ये सप्तभंगी से नहीं कह लेना देना, हमारे यहां तो लेन लग रही बिना सप्तभंगी वालों की। हमारे महाराज ने तो आज तक किसी से पूछा ही नहीं, क्यों। अरे जैन दर्शन की प्रतिपादन शैली है, सप्तभंगी कहो, अनेकांत सहदवाद कहो, नए प्रकरण कहो, कई नाम है इसके क्या, लेकिन वो जैन दर्शन की तुम शैली नहीं समझोगे तो उसके हर वाक्य का सही अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हर बात में कितनी अपेक्षाएं लगी हुई हैं और कितने उनके साथ शर्तों के साथ वो सत्य है, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हो गया ना। लिखा सप्तभंगी स्वरूप को गहराई से समझने के लिए लेखक की अन्य गति परम भाव प्रकाशक ने चक्र का सप्तभंगी नाम के छठे अध्याय का अध्ययन बारीकी से करना चाहिए, यहां उसकी चर्चा विस्तार से करना संभव नहीं। तो ये तो तुम्हारे यहां पहले एक सप्तभंगी न्याय करके पुस्तक भी थी कोर्स में, आजकल है कि नहीं है, अभय जी वगैरह पढ़ते थे तब थी ना सप्तभंगी तरंगिनी, है ना, कोर्स में थी। अब इसलिए वो बहुत स्पष्ट तरीके से मतलब सप्तभंगी पर विचार हो जाता था, न्याय शास्त्र का ग्रंथ होने से यदि ये भंग नहीं मानेंगे तो उसमें ही तकलीफ आएगी, ये भंग नहीं मानेंगे तो ये तकलीफ, बहुत विस्तार से बढ़िया चीजें समझाई हैं, तो उसे समझना चाहिए।
दादा,
मैंने कहा तो था कि भाई बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं अस्ति अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति फिर अवक्तव्य लेते हैं और इसमें तीसरे पे लिया, तो वो कहते पहले वास्तव में उन्होंने समझाया था इसके बदले में कि दो चीजें हैं, पहले कही जा सकती कि नहीं, वक्तव्य के अवक्तव्य, अवक्तव्य वक्तव्य की वो सप्तभंगी है, समझिए ना। तो वो बाद में वक्तव्य अवक्तव्य की शब्द ये नक्की होवे कि कहा जा सकता है तो क्या कहा जा सकता है, तो अस्ति कही जा सकती है, नास्ति कही जा सकती है। अब जहां जिनने तीसरा वहीं लिया तो अस्ति नास्ति दोनों कही जा सकती हैं, क्योंकि वो भी वक्तव्य का मूल है, अवक्तव्य का नहीं है, कौन सा चौथा, तो उसे तीसरी जगह भी रख सकते हैं। और फिर चौथे में अब यहां से अवक्तव्य की बात शुरू होती है, तो एक सामान्य अवक्तव्य, एक अस्ति अवक्तव्य, एक नास्ति अवक्तव्य, एक अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो ऐसा भी बिल्कुल बढ़िया बैठता है। अगर वो कहते हैं अस्ति नास्ति दोनों की बात कर दी तो वो दो तुम वो तुम मिला हुआ है, इसलिए उसके पहले ही अवक्तव्य की बात कर लो, ऐसी ये अपेक्षा है बताई थी उसने, उदाहरण भी दिया था सब। तो एक लड़का मेरे पास चक्कर काटता है कि भाई मुझे सप्तभंगी की चर्चा करनी है, तो मेरी तबीयत ऐसी ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन यहां है प्रवचन में है, तुम थे, मैं प्रवचन करता हूं ना तो तुम्हें ऐसा मत समझना कि मेरी तबीयत बहुत ठीक है, ये तो मैं पूरी शक्ति लगा करके और मेरा समझ लो बहुत रुचि का विषय है इसलिए करता हूं, इतना मेरा है नहीं स्वास्थ्य ठीक, तो दाढ़ में भयंकर दर्द है, कमर में भयंकर दर्द है, बैठ नहीं सकता हूं, पैर में दर्द है, खड़े नहीं रह सकता हूं, जो काम करता रहता हूं ना शांति जी, वो तो मेरा अत्यंत रुचि का विषय है ना, इसलिए मैं लगा रहता हूं। तो उसको दो दिन मैंने मना किया तो उसको तो बुरा तो लगता होगा कि घंटा भर तो प्रयत्न करते हैं और मुझको दो पांच मिनट बात करने के लिए मना कर देते हैं, तुम्हारा शांति जी से निपटे तो निपटा लो, कोई खास बात हो तो शांति जी मेरे से कहेंगे फिर अपन बात करेंगे, हैं? देखो तो किसी से बैठ के बात करते हैं तो घंटा आध घंटा लग जाता है, फिर मेरा ही उपयोग लग जाता है तो मैं ही नहीं छोड़ता हूं, तुम तो छूट के भागना चाहो लेकिन नहीं छोड़ता हूं, इसलिए अब देखो मैं सचमुच उसे पहचान नहीं सका, यहां बैठा है पहचान नहीं सकता कि कौन है, ये अपना विद्यार्थी है क्या, बाहर हो गया होगा क्या, भूतपूर्व है क्या, भूतपूर्व है, मुझे अभी कुछ पता नहीं है, ये आया है विद्यार्थी है इतनी बात मैं जानता हूं। चलो हो गया ना ये तो अपना, अब अपनी अगली गाथा शुरू करना चाहता हूं, है ना अपने पास 10-15 मिनट, 16वीं गाथा पढ़ो।
सो तीणस्थि कोई रणस्थि क्रिया साहब बता, क्रिया इणस्थि अफला धम्मो जगिण फलो परमो, परे आए शाश्वत नहीं परंतु है विभाव स्वभाव तो है अफल परम धर्म परंतु क्रिया फल नहीं कही।
देखते हैं पर्याय शाश्वत नहीं है, पर्याय अनादि अनंत नहीं है, शाश्वत नहीं है, निरंतर रहने वाली नहीं है। एक पर्याय की अपेक्षा बात है जी, पहले पर्यायों का जो प्रवाह है ना वो तो अनादि अनंत है तो वो तो द्रव्य का लक्षण है, इसलिए इसके साथ उसका कोई विरोध भाव नहीं आता है। पर्याय शाश्वत नहीं है, कोई भी पर्याय निरंतर रहने वाली नहीं है, परंतु है व्यवहार स्वभाव तो, ये सब बात काय के लिए कर रहे हैं, क्यों उन्हें फल की बात करनी है कि वो शाश्वत नहीं है तो उसे क्या फल मिलेगा, उसे क्या होगा। पर्याय शाश्वत नहीं, अब वो आई एक समय को पैदा भई अगली समय में खत्म हो जाने वाली है, वो क्या तो किसी का कुछ करेगी, वो क्या अपना करेगी, ऐसा लगता है कि नहीं है? एक है ना, अबे परंतु विभाव स्वभाव तो है, माने वो उसका शाश्वत नहीं है, माने स्वभाव शाश्वत नहीं है, लेकिन विभाव स्वभाव तो साथ है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, एक स्वभाव स्वभाव और एक विभाव स्वभाव। तो ये दो दो स्वभाव स्वभाव हो गए ना, इसलिए एक स्वभाव का लोप हो गया, तो अकेला उसे अकेला स्वभाव बोल दिया। लेकिन उसका जब विभाव स्वभाव कहते हैं ना, तो उसके बदले में यहां इसे स्वभाव स्वभाव कहने से वो बात स्पष्ट हो जाती है। और ऐसे प्रयोग बहुत होते हैं भाषा में, ऐसे प्रयोग बहुत होते हैं। तो कहते हैं क्योंकि विभाव तो है, विभाव स्वभाव तो है। गुरुदेव तो बहुत कहते हैं कि कर्म के उदय से कर्म का बंध नहीं हुआ, कि तेरा ही विभाव राग आदि जो हुए हैं वो तेरा विभाव स्वभाव है, और इन विभाव स्वभाव का कर्ता तू ही है, वो निश्चय से है, और अपने निश्चय में का एक अशुद्ध निश्चय में एक नाम भी है ना। तो नीचे की गाथा में वो बात जरा स्पष्ट, नीचे की पंक्ति में बात स्पष्ट होती है, अफल परम धर्म। अब यहां फल माने क्या, फल माने कर्म बंध। अरे भारी वाह, प्रकरण कर्म बंध का चल रहा है। तो कहते हैं कि वो जो स्वभाव कर्म बंध का कारण नहीं है, समझे, स्वभाव कर्म बंध का कारण नहीं है। तो अफल परम धर्म तो स्वभाव है, परम धर्म वस्तु स्वभाव धर्मों के हिसाब से, अथवा सदुपयोग के हिसाब से कहते हैं परम धर्म तो अफल है, माने वो संसार के रूप में नहीं फलता, उसका फल मोक्ष मिलता है, लेकिन उसके उसको फल ही नहीं कह रहे। अब अगर तुम्हें तेरे को फल भोगना पड़ेगा, जब भोगना पड़ा कहते हैं तो उसका अर्थ संसार के फल से दुख से मतलब होता है। परंतु क्रिया अफल नहीं कही, लेकिन जो तेरे अंदर जो रागादि भाव हो रहे हैं वे नहीं फलेंगे, इस धोखे में मत रहना, उनके अनुसार तो बंद होगा ही। तो अफल परम धर्म और क्या है आगे, क्रिया अफल नहीं कही। अभी ये जब पंक्ति अपन पाठ करते हैं ना, और जब ये पंक्ति हम आवे तो हमारे समझ में ये बात आनी चाहिए ना, कि यहाँ किसको कह रहे हैं कि जिसका फल नहीं मिलेगा, और किसको कह रहे हैं कि फल मिलेगा, वो फल माने क्या है ना। देखो पढ़ते हैं, मनुष्यादि पर्यायों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है। देखो समझना, बहुत विचित्र वाक्य है, मनुष्यादि पर्यायों में यही है शाश्वत, समझे ना, अनेक समयों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्यों यही होगी, यही है बस खत्म, अब अनंत काल तक ऐसी रहेगी, ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, समझ रहे, देखो वाक्य समझ, क्या कठिन, देखो पढ़ो पढ़ो।
मनुष्य आदि पर्यायों में यही ऐसी कोई शाश्वत पर्याय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव निष्पन्न क्रिया नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
देखो संसारी जीवों के भी स्वभाव निष्पन्न क्रिया है, वो कहते हैं संसार स्वभाव निष्पन्न क्रिया संसारी जीवों के है ही नहीं, ऐसा कोई मानता हो तो वो कहते ऐसी बात ये सत्य नहीं है। अब यदि इसको ऐसा नहीं है, इसको ध्यान नहीं दे रहे, तो वो उल्टा अर्थ कह रहे पूरा। गुरुदेव की भाषा में ऐसा बहुत आता है, तो कहते जाते हैं कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा बार बार कहते हैं, एम नथी, बस एम नथी, पूरी तरह समझा देंगे और फिर कहेंगे एम नथी है। तो जब तक वो एम नथी नहीं आएगा तब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं है। यदि आप विशिष्ट प्रतिभाशाली हैं तो वो जब एम नथी कही उसके पहले आपकी समझ में आना चाहिए, क्या तात्पर्य यह है कि संसारी जीवों के व्यवहार स्वभाव से उत्पन्न होने वाली राग देश में क्रिया होती ही है। उन्होंने कही थी संसारी जीव के कोई क्रिया नहीं है, तो कहते कि नहीं कैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है, माने वो क्रिया होती ही है। यदि परम धर्म अफल है तो राग देश में क्रिया अवश्य अफल नहीं है। वो राग देश रूप क्रिया है, उसका फल अवश्य मिलेगा। देखो वो अवश्य फलेगी नहीं लिखा, तो उसका फल अवश्य अफल नहीं है। ये न्याय की भाषा। इसमें क्या हुआ है, दो ना आ गए हैं, एक अफल में आ रूप, एक नहीं, पर दो आपस में कट जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, है ना। तात्पर्य यह है कि वीतराग भाव रूप क्रिया तो मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न नहीं करती है, पर राग देश रूप क्रिया तो मनुष्यादि पर्याय रूप फल उत्पन्न करती ही है। मैंने सीधी सती है कि जब वीतराग भाव रूप क्रिया होगी ज्ञानी धर्मात्माओं की, तो उसका फल क्या मिलेगा उसे। अभी ये आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा शांति जी, ये क्या कह रहे है, क्यों कह रहे, क्या बात कह रहे। देखो सम्मा दर्शन मुक्ति का कारण है ना, बंध का कारण तो नहीं है। सम्मा दर्शन सम्मय ज्ञान सम्मय कार्य। अब एक जीव तद्भव मोक्षगामी नहीं है, और सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र उसके हैं, तो उसको जो देवगति का बंध होगा, जो जाएगा जहां भी, तो उसको तो जो उसको जो शुभ राग हुआ है तो उसके फल में जाएगा, वो उसकी धर्म वाली क्रिया तो बिल्कुल अफल हो गई ना। आप समझ जाए क्या, उसका तो कोई फल मिला ही नहीं, तो उसका फल तो मोक्ष था, वो तो अभी मिला नहीं, अब जब मिलेगा तब मिलेगा। तो अकेली इतनी से थोड़ी मिल जाएगा, उस वक्त भी करेगा ना सम्मेलन वगैरह होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो परम धर्म है ये अफल है, समझ जा रहा है। अब कब तुमको बोले कैसी बात करते हो, उसे तो मोक्ष मिलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए। अब देखिए जैसे परम अधर्म तीव्र मिथ्यात्व परम एकत्व बुद्धि, अगर यहां तो कुछ हुआ नहीं तो परम एकत्व बुद्धि तीव्र मिथ्यात्व बनी रही, स्वर्ग में चला गया। देवगति में नहीं कह रहा हूं, स्वर्ग कह रहा हूं जानबूझ कर, क्योंकि उसने बताया था परमहंस नामा परमति आदि सहस्राद नहीं गति, तो बारहवें गुण स्थान बारहवें स्वर्ग तक जाता है। अब स्वर्ग तो अधर्म तो फला नहीं ना, धर्म भी नहीं फला, क्योंकि उसका फल मोक्ष था और इसका फल निगोद था मिथ्यात्व का, और अधर्म भी नहीं फला, लेकिन दोनों फलेंगे। क्यों, क्योंकि इसे कोई बंद तो होता नहीं, जो उदय में आएगा और फिर वो फलेगा, तो फिर बेकार ही हो गया ना समय दर्शन, क्या करे मिथ्या दर्शन। अरे बेकार नहीं, वो जो जितने काल तक मारी से तीन चार आठ वर्ष भव तक लगातार शुभ भाव करता रहा, लेकिन वो जो अंदर विद्यमान था अधर्म, फिर वो निगोद गया ना उसे मान में। तुलसा सिद्धि पाद में लिखा है ना, एन अंशेन रागा तेन अंशेन बंधनम अस्ति, एन अंशेन राग नहीं है बंध नहीं है, पर बस बंध है और बंध नहीं है, यही सब बात करी। मोक्ष है नहीं कहा, और मोक्ष है तो क्या, अब इसी को मुक्त मान लोगे, इतनी बात, विकार से मुक्त हो गया, कोई मजा तो आई नहीं मोक्ष का, तो मजा आ गया ना मजा, तो अभी गुणस्थान में कोई सुख नहीं है। दलोत राम जी ने तो ये लिखा है, क्या यो चिंत निज में थिर भये जिन अकथ जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेन्द्र वा अहिमेंद्र के नाही। राजा सैनिक नरक में है और समय दर्शन भी है, और तीसंगत प्रकृति बंद रही है उनको निरंतर, तो निरंतर बंधी प्रकृति है, तो निरंतर बंधी जब प्रकृति बंद रही तो तत्संबंधी राग भी हो गई ना, वो सुबह ही राग होगा ना, वो सोलहगान भावना रूप है, उनमें जो भी भावना रूप जैसा भी होगा है? तो क्या फायदा हुआ तुम नरक में चले गए? कहते नहीं वो सात में नहीं गए थे, यही फायदा हुआ है? फल तो मिला ही नहीं। अरे भाई उस नरक में भी चौथे गुण स्थान के योग अतीन्द्रिय आनंद ले रहे थे, डंडा पड़ रहे वहां पर उस वक्त भी ले रहे हैं, नहीं मिला वहां क्यों कैसे कहते हैं? क्या तो मैंने प्रश्न किया और क्या उत्तर दिया बता सकते हो आप? अपन के मोक्ष वाला फल तो जब मिलेगा जब मिलेगा, और निगोद वाला फल जब मिलेगा जब मिलेगा। तो अभी सम्मान दर्शन हो गया, छठवें सातवें गुण स्थान में है, ऐसी स्थिति में तो हमको लिखा ना बेकार लगता है, इसमें लिखा भी है कि अब वो अफल है, परम धर्म तो अफल है, है? आप समझे ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि उस वो सीधा मोक्ष अभी नहीं मिलेगा, इधर संसार के रूप में बाल बच्चे मिल जाए, पैसा मिल जाए, फिर मैंने बहुत धर्म किया, धर्मात्मा किया, वो सम्मानदृष्टि हो गया, उसने इतना धर्म किया, फिर उसको ऐसा पुण्य बनना चाहिए कि खूब पैसा मिल जाना चाहिए, लेकिन वो तो गरीबी की गरीबी है, खाने को नहीं है। तो खाने को नहीं होना गरीबी होती है, तो राजा श्रेणिक का जीव जो नरक में है वो सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, नहीं है ना? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन जो ज्ञान हुआ, तो छठवां सातवां गुणस्थान हुआ, तो उस वक्त वो छठवें सातवें गुणस्थान के योग्य शांति तो है ना, उसको वो सुख तो है कि नहीं है, तो उसकी ना अपेक्षा नहीं की, इसलिए फल कह दिया, लेकिन वो फल वहां विद्यमान है, बस बाकी चल कर रहे।
आनंद स्वरूपी अविना